ओम शांति। तो आज हम सब जो हमारे आदि रतन जो आनंद किशोर दादा यज्ञ के जो पिलर रहे जिनका हम आज स्मरण करने जा रहे हैं, उनकी कुर्बानी, उनकी यह बलिदान यज्ञ के लिए, इस संस्था के लिए, कलप कलप के लिए जो नूत किए, जो हम सभी के लिए आदर्श होकर के गए हैं, पूर्वज रहे हैं, तो हम सब पूर्वजों को याद करे बिना, पूर्वजों को स्मरण करे बिना हमारा ये आध्यात्मिक सफर कभी पूरा नहीं होगा, सदा ही अधूरा रह जाता है। इसीलिए ऐसे महान दिग्गज अथक सेवाधारी जिन्होंने अपने लौकिक जीवन को कैसे अलौकिक में परिवर्तन किए, और उन्होंने जैसे बाबा के जैसे ही बिजनेस था उनका, जो हैदराबाद सिंध में ओम मंडली का जो धूम मच गई थी, तो चारों तरफ से इस संस्था के लिए जिस प्रकार की नजरिया लोगों की बनी थी, उस समय में किसी भी बातों का परवाह न करते हुए लौकिक में जैसे आनंद किशोर दादा ब्रह्मा बाबा के बड़े भाई के दामाद लगते थे, और दीदी के उस जैसे कि देवर थे वो लौकिक में, तो कोई न कोई संबंध से जितने भी आत्माएं वहां पर इकट्ठे हुई है, कोई न कोई संबंध बाबा के साथ रहा है सबका। तो इस हिसाब से जैसे बाबा अपने बिजनेस के कारण कलकत्ता में बिजनेस जो करते थे, तो उनका भी कलकत्ता में जो हीरा जवाहरातों का ही बिजनेस था आनंद किशोर दादा का भी, तो वहां दादा का लौकिक नाम था लक्ष्मण, तो वहां उनका भी पार्टनर था, उसका नाम था राम, तो राम लक्ष्मण एंड कंपनी के नाम से मशहूर थे वो कलकत्ता में। बाबा का जहां गद्दी चलता था उनके जस्ट आगे उनका भी बिजनेस था हीरे जवाहरात। तो इस कारण से जैसे जैसे बाबा में अलौकिक जो परिवर्तन आते हुए देखा, परिवर्तन ऐसा जबरदस्त देखते हुए उनको भी यह आभास होने लगा कि हमारे इतने बड़े, इतने जो नामी ग्रामी, जो उस समय जो लखीराज दादा के नाम से जाने जाते थे, तो वो इस प्रकार के मार्गों में जो चल रहे हैं, उनको भी उस मार्ग में चलने के लिए अंदर से प्रेरणा आई कि जैसे हमारे बाबा चल रहे हैं, तो बड़े लोग जो चलते हैं तो आगे चलने में कोई तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि बड़े आगे होते हैं, जो गार्जियन आगे होते हैं तो झंझट बहुत कम हो जाता है और बिगड़ने का इधर उधर का चांस ही नहीं रहता है। तो उनके जो परिवर्तन देख करके उन्होंने भी धीरे धीरे अपने बिजनेस को समेटना शुरू किया, और जो बिजनेस जैसे बाबा के उदाहरण शांतामणि निर्मल शांत दादी कहती है कि जैसे बाबा ने अपने जो सेवक राम था उनको सारा बिजनेस हवाला करके अपना जो हिस्सा में मिलता था, तो वही हिस्सा लेकर के बाबा संतुष्ट होकर के पीछे मुड़ के नहीं देखा। इसी हिसाब से आनंद किशोर दादा ने भी अपना पूरा बिजनेस का हिस्सा उसको दे करके जो मिला उसको ले करके फिर हैदराबाद सिंध में तन मन धन जन सहित समर्पित हुए। तो फिर उनमें उस समय जो जितने भी लोग आए थे यज्ञ में, तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे उसी समय उन्होंने ग्रेजुएट पास किए थे, एजुकेशन में उनकी अच्छी खासियत थी और जो इंग्लिश में अच्छा उनका पकड़ था, तो उसके कारण से बाबा को भी एक अच्छे हैंड्स मिल गया और बाबा को ऐसे निश्चिंत कर दिया था दादा ने। तो फिर तो दादा कहते हैं कि 14 वर्ष तक वहां पर जो तपस्या चली, भट्टी चली, जो साधना हुआ, तो क्योंकि साधना जब तक हम नहीं करते हैं, साधना में परिपक्व नहीं होते हैं, तो आध्यात्मिकता की बातें दुनिया में बताना बहुत मुश्किल होता है। अपने जीवन में उतरी हुई बातें ही दुनिया में किसी को बताते हैं, किसी को सुनाते हैं, तो वही कामयाबी मिलती है उसी से ही। तो इसीलिए दादा कहते हैं कि 14 साल तक जो भट्टी चली, तो भट्टी चलने के बाद में जब कराची छोड़ के जब भारत आना हुआ, तो भारत में आने के बाद, तो यहाँ आने के बाद में जैसे कि यहाँ तो पहुंच तो गए, लेकिन दादा कहते हैं कि वहाँ का जो क्लाइमेट और यहाँ का जो क्लाइमेट है, दिन और रात का अंतर था, पूरे अलग था। तो यहाँ आने के बाद में जैसे कि आने वाले सभी एक बात से बीमार होने लगे, जैसे कि अरे का तबीयत पानी ऊपर नीचे होने लगा। तो इस हालत को देखते हुए बाबा ने दादा को ये ड्यूटी दिया था कि आप अहमदाबाद जाके रहो, तो वहाँ जाकर के सभी से मिलो, हॉस्पिटल के ट्रस्ट वालों से मिलो, हॉस्पिटल में डॉक्टर की सेवा करो, सबकी ऐसी प्रकार से सेवा करो जिसके कारण से यहाँ आने वाले सभी बाबा के जो बच्चे हैं उसका भी आशीर्वाद से ट्रीटमेंट हो सके, इनका बड़ेली ट्रीटमेंट हो जाए, उनका आत्मा का ट्रीटमेंट हो जाए। इस तरीके से वहाँ ट्रीटमेंट शुरू हुई उनकी। तो फिर क्योंकि उस समय यहाँ आने के बाद में जो अर्थतंत्र का जो मामला था थोड़ा कमजोर पड़ा हुआ था, तो इसीलिए उन सबको वहाँ पर ज्ञान सुना करके दादा ने अपना बनाए थे और एक एक को बुला करके सबको वहीं रख करके दादा सबको ट्रीटमेंट कराते थे। तो ये सिलसिला जैसे कि 1-1.5 साल चली, तो दादा वहीं डेरा जमाए हुए थे उस समय। अच्छी रीति से जो आने जाने वालों को खूब सेवाएं की। तो धीरे धीरे फिर दादा कहते हैं कि जब पहले आए थे तो हम सब बिरजो कोठी में रहे, तो बिरजो कोठी तो अभी अभी सरकार का हुआ था, तो इतने बड़े संख्या में होने के कारण से घर तो बड़ा चाहिए, तो उस कारण से वो लिया गया, लेकिन उसका जो किराया था इतना ज्यादा था, तो रहते रहते रह तो गए, लेकिन उस समय यह समस्या खड़ी हुई थी क्योंकि आने के लिए कोई साधन और स्रोत ही नहीं था, खर्च ज्यादा थी और आने का कोई रास्ता नहीं था। अभी अभी आए थे तो ये ज्ञान को सबको मन मस्तिष्क में चला जाए इतनी भी बहुत कठिन बात होती थी, सेवा तो विस्तार को पाया ही नहीं था। तो यहाँ आने का जो कहानी जो दादा सुनाते हैं कि हम भारत में इसीलिए आए थे, था तो नियम अनुसार ड्रामा अनुसार आना था, लेकिन बाबा को बोला था यहाँ जो भारत में जो आए थे जो सिंधी कंपनी सिंधी लोग, तो उनके ही रिलेशन वाले जितने 375 की संख्या थी पहले हैदराबाद में, जब आने से पहले 300 माता और बहने थे, 75 भाई थे। जब भारत में आना हुआ तो किसी कारण से कई सारे भाई कम हो गए, तो भारत आते आते भाइयों की संख्या बहुत कम हो गई थी और माताओं और बहनों की संख्या तो लगभग बराबर ही यहाँ पर पहुंचे थे। तो यहाँ आने के लिए निमंत्रण दिए थे उन सब ने, आओ तो हम आप सबकी सेवा करेंगे। तो यहाँ आने के बाद में उन्होंने यहाँ तो पहुंचे, यहाँ पहुंचने के बाद उन्होंने हाथ खड़ा कर दिए, हम आप सब आपको कोई सहयोग नहीं करेंगे। उनका यह लक्ष्य था, उनका यह साजिश था कि यहाँ आने के बाद में अगर किसी प्रकार का सहयोग नहीं देंगे तो हमारे बहू बेटियां जो है वो अपने अपने घर रिटर्न जाएंगे और फिर ये संस्था खलास हो जाएगा। उनका यह लक्ष्य था, तो इस कारण से उन्होंने हाथ खड़ा कर दिए। दादा कहते हैं कि इस प्रकार से उन्होंने मदद नहीं किया। तो उस समय 1953 की बात है, तो बाबा ने फिर दादा को पूरे भारत का टूर के लिए भेजा था, देख के आओ जहाँ कैसी धरनी है, कहाँ कैसी सेवा हो सकती है, हर चीज को ऑब्जर्व करने के लिए भेजा था। तो धीरे धीरे फिर बातें आगे बढ़ती गई। तो गंगे दादी का जो हमने एपिसोड सुना उसमें ये बातें जुड़ी हुई है कि जब कानपुर में जब ये वहाँ पर कोई धर्म सम्मेलन चल रहा था तो गंगे दादी ने जिस प्रकार से अपना भाषण दिया था तो उससे प्रभावित होकर के जो शिवानंद आश्रम के कोई व्यक्ति थे तो अभी अभी जापान से जो रिलीजियस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करके आए थे तो ये ज्ञान सुनकर के सब चकित हो गए थे कि ऐसा सुंदर ज्ञान अभी तक न हमको कभी सुनने को मिला, न कभी हमने इस बात के लिए चर्चा की थी। इस बातों को उनको जैसे कि बहुत अच्छा लगा। तो दूसरा धर्म सम्मेलन फिर से जापान में होने जा रहा था तो जो शिवानंद आश्रम के जो फाउंडर तो उन्होंने फिर उस जापान में जो कॉन्फ्रेंस होने जा रहा था उनको यहाँ से पत्र व्यवहार के द्वारा उसको रिक्वेस्ट किया गया कि भारत में एक ब्रह्म कुमारी संस्था आई है, ये बहुत अच्छा ज्ञान देती है, अगर उनको भी इस जो कॉन्फ्रेंस में बुलाने चाहोगे तो बहुत अच्छा होगा। तो इस तरीके से उन्होंने रिक्वेस्ट किया तो ये बात उन्होंने स्वीकार करके वहां से फिर पत्र आ गया। तो बाबा के हाथ में पत्र आया, दादा ने पढ़ के सुनाए, उसके बाद बाबा ने स्वीकार कर लिया, ठीक है जाओ। तो जाने के लिए अब कौन कौन जाएगा, पहले तो ये बातें तय हुई। तो उस समय दादा इतने पढ़े लिखे थे, इंग्लिश में अच्छी पकड़ थी उनकी, जैसे अनुवाद करना, जैसे उस समय कहते हैं कि पत्र व्यवहार करने सब कारोबार दादा ही करते थे, आनंद किशोर दादा। तो फिर उस समय तय हुई दादी रतनमणि, दादी प्रकाशमणि, तो आनंद किशोर दादा को उस प्रोग्राम के लिए तय किया गया। तो फिर वहाँ पहुँचने के बाद में प्रोग्राम हुआ, 15 दिन के ही हिसाब से गए थे यहाँ से, 15 दिन के बाद प्रोग्राम पूरा हो जाएगा, वापस आ जाएंगे। इस तरीके से वहाँ पहुँचे तो फिर वो प्रोग्राम अटेंड कर लिए। वो ये बातें सुनकर के उन सबको इतनी अच्छा लगा कि ये बातें तो हम सबको बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको तो हमको कुछ करना चाहिए बोल के फिर धीरे धीरे उनका टाइम बढ़ाते गए। तो वहाँ जाने के बाद में वहाँ सिंधी तो पहले से आए हुए थे, वहाँ पर बिजनेस करते थे, तो गुजराती जो फैमिली थे उनसे भी उनकी मुलाकात हुई दादियों की, जो फिर जैसे पंजाबी फैमिली से भी मुलाकात हुई। तो ये सब देख उन सबको अच्छा लगा। और एक आश्चर्य की बात है कि जब दादियां और दादा वहां पहुंचे तो सिंधी लोग देख करके हैरान हो गए कि जो सिंधी सिंध में तो जैसे कि हड़कंप मच गया था जो ओम मंडली के नाम से। तो भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो सब अपने अपने जगह पर लोग चले गए थे, तो वहाँ जापान में हमारे दादा को और दादियों को देख करके हैरान हो गए कि ये संस्था अभी भी जीवित है क्या। क्योंकि फिर वहाँ सब बातें बताए गए। बंटवारा के बाद में भी मैं भी 3 साल तक वहाँ रहे बाबा के पूरा संगठन, तो उसके बाद फिर भारत में आना हुआ। तो ये सब बातें सुन करके पाकिस्तान जैसे मुसलमान के देश में रह करके भी इन लोग इतने साल तक रहे तो कोई शक्ति है इनके अंदर में, इसी महसूसता उनको हुई और वो भी हैरान हो गए। तो धीरे धीरे जाइता ही इसका जैसे कि बुलावा होने लगा, और कोई 10 दिन के लिए, कोई 5 दिन के लिए, कोई 15 दिन के लिए बुलाते थे, करते 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 6 महीना बीत गया, पूरा 6 महीना। तो फिर बाबा को पत्र लिखे कि बाबा यहाँ तो सेवाएं बढ़ती जा रही है। तो बाबा ने बोला सेवा जम के करो, बिजी रहो सेवा में। बाबा ने यहाँ से इस प्रकार के लेटर भेजते थे, उमंगों सा दिलाने वाले लेटर। तो सेवा बढ़ती गई। तो उसके बाद में 6 मास पूरा हुआ तो उसके बाद फिर वापस आने की तैयारी चल रही थी। तो फिर हांगकांग से पूरा निमंत्रण मिला, तो हांगकांग में भी 2 मास, हांगकांग और सिंगापुर में 2 मास की सेवाएं हुई। तो लगभग 8-9 मास सेवा करके फिर दादा और दादिया हमारे सिंगापुर से सीधा मद्रास के लिए रवाना हुए थे। तो मद्रास में जब दादियां और दादा आ रहे थे तो बाबा को इतना खुशी हुई कि हमारे मेरे बच्चे इतना विदेश में जाकर के सेवा करके आ रहे हैं, तो उनको रिसीव करने के लिए जगदीश भाई को, दादी जानकी को और जो बनारस के गुप्ता जी को भी भेजे थे। तो वहाँ जो रिसीव करने के लिए गए थे तो जब पहुंचे तो वहाँ जैसे कि ये मीडिया कॉन्फ्रेंस किया गया था, तो इसके कारण से बहुत सारी सेवाएं हुई कहते हैं दादा, कि बहुत लोगों को पता चल गया, सबको समझ में आ गया और लोगों को ऐसा जैसे कि एक गर्व हो रहा था कि जैसे ये यहाँ के ब्रह्म कुमारीज के लोग भी जापान में जाके इतने दिन से सेवा करके आए हैं, तो सबको एक नाज था उस समय। तो फिर दादी जाने की उस समय वहाँ भी बहुत सारे सिंधी लोग थे मद्रास में, तो वहीं रह करके फिर काफी सेवाएं वहाँ भी किए। उसके बाद में फिर बाबा ने डायरेक्ट माउंट आबू नहीं बुलाए उनको, और फिर बाबा ने बोला कि सब जगह घूमो, सबको अनुभव सुनाओ, अनुभव शेयर करो। तो उसके बाद में दादा दादियों को और दादा को कभी लखनऊ गए, कभी कानपुर, कभी बम्बई, कभी दिल्ली, करते करते फिर माउंट आबू के लिए प्रस्थान किए। तो यहाँ फिर पहले तो दादियां और दादा यहाँ से गए थे तो बिरजकोठी में थे, तो आते आते तो उस शिफ्ट होकर के ये धौलपुर हाउस और राजस्थान सर्किस हाउस में संस्था शिफ्ट हो चुकी थी। तो यहाँ आने के बाद में बाबा ने खूब अच्छी स्वागत की उनको, और दादियों को तो कहते हैं कि गिनियों का हार पहनाए थे। गिनियां क्या होती? हाँ, तो खूब वहाँ पर जैसे कि पिकनिक हुई, बहुत अच्छी स्वागत हुई, जैसे कि बाबा ने बहुत अच्छी तरीके से उनको सबको वेलकम किया। तो उसके बाद में दादा कहते हैं कि मुझे तो ज्यादा से ज्यादा समय टूर में ही रहना पड़ा, क्योंकि अनुभवी थे और अनुभव की अथॉरिटी ही आज भी पूरे मुरली में बाबा ने बोला अनुभव की अथॉरिटी। तो बाबा ने जब ब्रह्मा बाबा ने दादा को कहा था समर्पित जब हो रहे थे, तो ये संस्था है ना एक पट वृक्ष की तरह विश्व ब्रह्मांड में फैलेगा, तो उच्च मर्तबा पाना होता है तो हर प्रकार की सामना करनी पड़ती है, बहुत प्रकार की परीक्षाएं आएंगे, बहुत प्रकार की बातें होगी, इस सब को परवाह करे बिना आगे बढ़ना पड़ेगा, बोल के बाबा ने खास उनको ऐसा मंत्र दिया था। तो उसके कारण से दादा जैसे कि परिपक्व अवस्था, जैसे कि उनके चेहरे से भी आज हम देखते हैं कि अनुभव की जो अथॉरिटी दादा में दिखाई पड़ता है। तो फिर तो दादा यहाँ पहुंचने के बाद में पहले फिर यहाँ सेवाएं शुरू हुई, तो 1954 में लगभग अंतिम का जो महीना था वो अहमदाबाद में सेंटर खुला, तो वहाँ सेंटर खुला तो दादा को बाबा ने वहाँ सेवा के लिए भेजा। तो वहाँ सेवाएं जब चल रही थी तो भारत में सबसे पहला म्यूजियम जयपुर में किशनपुर बाजार में जब खुला था, तो वहाँ जब म्यूजियम तैयार हुआ तो बाबा ने फिर उनको सेवा के लिए वहाँ भेजा। तो काफी समय वहाँ सेवा किए, करते करते धीरे धीरे जब यह सब संस्था के लिए जो चित्र प्रदर्शनी का जो सेट बन रहा था, तो वहाँ पर एक टीम की जरूरत थी, तो टीम जो पूरा मिलकर के कर सके, पहले भी उसकी काफी रिहर्सल हो गई थी, हमारे दादा विश्व रतन बताते हैं पहले भी उसकी खूब ट्रायल हुई, तो उसको पूर्ण रूप देने के लिए, मूर्त रूप देने के लिए, फिर हमारे रमेश भाई कहते हैं कि जब वो शेड तैयार हो रहा था तो वहाँ पर निर्मल भाई, आनंद किशोर दादा, अर्जुन दादा, लगभग काफी टीम वहाँ तैयार होकर के दिन रात काम करके वो सेट को तैयार किया गया। तो उसमें भी कहते हैं कि अहम भूमिका रही आनंद किशोर दादा की। तो उसके बाद तो फिर सेवाओं का दौरा जारी हुआ, जाना सेवाएं होती थी वहां वहां जाना। तो दादा कहते हैं हैदराबाद छिंद में जब बाबा ने एक बार दादा को बोला था, ये माता और बहने है ना, बाबा ने उनके ऊपर कलश रखा है, तो उनके ऊपर हम कभी भी अभिमान और अहंकार दिखा नहीं सकते। वे बड़े हैं, बाबा ने आगे रखा है, तो उनको सदा ही आगे रखना है। तो उन्होंने जैसे कि आशीर्वाद के रूप से उसको स्वीकार किया, तो आशीर्वाद के रूप से स्वीकार किया, कभी भी यह अभिमान और यह अहंकार आने नहीं दिया उन्होंने। तो दादा कहते हैं कि जब भारत में आए तो जिस प्रकार की हमारी जो बेगरी का पार चला, तो चारों तरफ सेवा में गए, तो सेवा में कहते हैं कि माता और बहने जो ज्ञान सुनाती थी उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता ही नहीं था, सब लोग स्वीकार करते थे। लेकिन भाई लोग जब सुनाने लगते थे तो वहां डिबेट चालू हो जाती थी। और उस समय दुनिया में जैसे कि एक धर्म की जो अधोगति का चरम सीमा तक पहुंचा हुआ था दुनिया, और दुनिया में पूरे भारत तो दुनिया का गढ़ ही है, तो यहाँ पर धर्म की जो अधोगति का जो उस स्थिति में पहुंचा हुआ था, तो धर्म के नाम पर जो शास्त्रास्त्र करना, शास्त्र पढ़ना और दूसरों को नीचे दिखाना, हीन भावना से देखना, आज से 3-4 दिन पहले भी जो मुरली चला था तो बाबा ने उसमें जिक्र किया कि सेंटर में कोई आए और उसको पूछा कि क्या तुमने शास्त्र पढ़ा है, तो बोला हमने तो नहीं पढ़ी है। तो शास्त्र पढ़ना जरूरी है, तो बहन जी मुझ गई थी उस समय, दादियां थी होगी। तो इस तरीके से धर्म इस तरीके से रूपांतरित हो गया था, उसका स्वरूप अलग हो गया था। तो चारों तरफ जो पाखंडीपन जो बढ़ जाता है, तो प्रैक्टिकल जीवन में तो कुछ होता नहीं है, लेकिन शास्त्रास्त्र करके लोगों को नीचे करना उस समय की एक जैसे कि नियम बन चुका था। तो उस हालत में उस गति में इस तरीके से ज्ञान सुनाना बहुत कठिन जैसे कि होता था। तो भाइयों को ज्ञान सुनाने में उस समय उस बातों में बहुत ज्यादा डिबेट होती थी, कहीं झगड़ाएं हो जाती थी, कहीं का तो हड्डी भी तोड़नी, जैसे कि जगदीश भाई को भी कभी धुलाई मिली थी इस तरीके से, इतना पढ़े लिखे धुरंधर होने के बाद। आपको ये पार्ट चैप्टर अभी बाकी आपको करना पड़ेगा। तो इस तरीके से फिर दादा कहते हैं कि बहने और माताओं से जो सेवाएं हुई, तो भाइयों को बाबा ने बोला इसीलिए गार्ड बन जाओ और माता और बहनों को आगे रखो। तो इस तरीके से उसका प्रैक्टिकल स्वरूप भारत में आकर के जो बाबा ने वो मंत्र वहां दिया था, दादा ने स्वीकार किया था आशीर्वाद के रूप से, तो भारत आने के बाद में उसको प्रैक्टिकल सबूत उनको मिला कि जहां भी जाएंगे बहनों से और माताओं से, जैसे हमारी दादियों से इतनी सारी सेवाएं हुई है। तो धीरे धीरे दादा कहते हैं कि बाबा जब अव्यक्त हुए, तो बाबा अव्यक्त होने से पहले बाबा ने भविष्यवाणी किया था कि बच्चे अब विश्व की सेवा होनी है, इस संसार की सभी आत्माओं को पता चलनी चाहिए बाबा इस संसार में आए हैं। तो ये हद की जो बॉडी है ना, हद है, तो बहुत बड़ी सेवाएं नहीं हो सकती है। तो बाबा ने बोला था, ब्रह्मा बाबा ने, मुझे अव्यक्त होना जरूरी है। तो दादा बाबा की तपस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, तो फिर बाबा जब अव्यक्त हुए, तो अव्यक्त होने के बाद में सेवाएं धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो फिर विदेश, हमारा जो म्यूजियम के बारे में भी दादा ने कहा है कि रमेश भाई को बुला करके खास बाबा ने डायरेक्शन दिया था कि बच्चे यहाँ भी म्यूजियम होना जरूरी है। तो बाबा जैसे अव्यक्त होने के ही रात में इसको बाजार का जो म्यूजियम था उसको रजिस्ट्रेशन करवाए थे, तो उसको बनाने में खास रमेश भाई की हाथ रही, और उसका मॉडल तैयार करने में जैसे कि नीरव भाई ने खूब जैसे कि बुद्धि लगा करके वो जैसे कि सबके लिए एक आदर्श बन गया, प्रेरणा का स्रोत बन गया। उसके बाद बहुत सारे लोग माउंट आबू में आने लगे, फॉरेन के भी लोग आने लगे, और ये ज्ञान सुनकर के सबको हैरान होने लगता था, विदेश के लोग भी, इतना अच्छा ज्ञान हमें, हम सबको काम में आने वाला चीज, अभी तक ये ज्ञान हमको पता नहीं है। इस तरीके से उन्होंने इस ज्ञान को जैसे कि रुचि बहुत दिखाई लोगों ने। तो इसीलिए दादा एक और भी बातें सुना रहे थे कि हमारी जयंती बहन पढ़ाई उन्होंने माउंट आबू में की, उसके बाद फिर जयंती बहन लंदन गई, तो वहां जाने के बाद में क्या पूरे परिवार, जयंती बहन का पूरे परिवार लंदन में शिफ्ट हो चुके थे। तो वहां पर जयंती बहन को तो कोई अंग्रेज का है ना, अंग्रेज का जो स्पिरिचुअल सेंटर था वहां पर सप्ताह में एक बार लेक्चर करने के लिए बुलाते थे। तो लेक्चर देते देते सबको अच्छा लगा, तो उसी लेक्चर्स के जरिए जो अंग्रेज भाई का नाम लिया है दादा ने कि केन भाई और चार्ली भाई, वहीं से ज्ञान में आए थे। तो वो ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन जो ज्ञान उन्होंने वहां पाए, तो फिर जयंती बहन की बहन से छुट्टी लेकर के सबसे पहले विदेशी जो भाई आए थे वो केन भाई और चार्ली भाई आए थे। उसके बाद फिर उन्होंने वहां अपने ऑस्ट्रेलिया में जाके उन्होंने ब्रांचेस खोले। उसके बाद धीरे धीरे सेवा की जो वृद्धि होती गई, उसके बाद दादा कहते हैं कि 1972 में कोई कॉन्फ्रेंस होने जा रहा था अमेरिका में, तो वहां भी फिर निमंत्रण आया था। तो उस निमंत्रण में बायोडाटा मांगा था, तो आनंद किशोर दादा, निरोड़ भाई, दादी रतनमणि और एक दो और को भी उसमें दिए थे। फिर बाद में एक जबरदस्ती मीटिंग हुई, कौन जाएगा वहां जाके, कौन सेवा कर सकता है, अभी की आवश्यकता क्या है ना। तो उसके बाद में वहां जाकर के सेवा कौन कर सकता है, तो इस हिसाब से फिर चार दादियां अथवा बहने और दो भाई, जगदीश भाई और रमेश भाई, उस जो कार्यक्रम में गए थे। तो धीरे धीरे बहुत सारी सेवाएं वहां भी हुई, तो धीरे धीरे ये दिन प्रतिदिन उन्नति प्रगति को पाते गए। तो आज हम कहते हैं कि दादाजी बाबा अव्यक्त होने के बाद में बाबा दादा हमारे मधुबन में रहने लगे। तो धीरे धीरे हैदराबाद से लेकर के यहाँ तक जो कारोबार थे, नीरू भाई को भी बुलाए गए। तो फिर दादा और नीरू भाई मिलकर के पूरा यज्ञ का कारोबार, पढ़ा लिखा जो लेके सिग्नेचर से लेकर हर बात का जो शिक्षा देना, जैसे कि ज्ञान की बातें, योग की बातें और सेवा की बातों में जो अनुभव के लेन देन करते थे, उस समय बहुत लोगों को इस चीज की जरूरत थी। तो धीरे धीरे उन्नति जो होती गई, और उसके बाद दादा कहते हैं, और दादा में जो निश्चय और जो विश्वास था, उसके कारण से कभी एक बार फिर बम्बई में गए थे दादा, तो एक हंसी की बातें हैं। तो बम्बई में सेंटर में आइसक्रीम बनाए थे बोलते, तो आइसक्रीम जब खाए तो खाने के बाद ही बाबा की याद आ गई, शिव बाबा की। तो उनको अंदर से आत्मग्लानी की महसूसता हुई, बाबा को याद करे बिना, बाबा को स्वीकार कराए बिना मैंने कैसे खाया। तो फिर उन्होंने लेटर लिखा मधुबन में शिव बाबा को। तो फिर उसके बाद में यहाँ बाबा ने पढ़े, तो शिव बाबा ने स्वीकार कर ही लिया। तो उसके बाद में फिर दोबारा यहाँ से लेटर गया कि बच्चे कल जब आइसक्रीम खा रहे थे तो बाबा की याद नहीं आई, और एक बार और खाओ और बाबा को खाते समय याद करो बोल के यहाँ से लेटर भेजा था। तो दादा को जैसे कि कितना स्मृति में होनी चाहिए, बाबा को पल पल में याद। तो कभी कदा ऐसा हो ही जाता है, कभी धर्मा बाबा भी कहते हैं ना कि भोजन में कितना भी याद करके खाऊं बोलता हूँ, लेकिन चलते चलते कहीं ना कहीं बुद्धि खिसक जाती है। इसीलिए अभी 2-4 दिन पहले जो मुरली चली थी, बच्चे मुझे याद दिलाओ कि बाबा भी भूल जाता है, बीच बीच में याद दिलाया करो। तो ये तो है बाबा की निर्माणता की निशानी। तो बाबा हम सबको इस प्रकार की जो शिक्षाएं देते हैं, तो और भी बहुत सारी बातें हैं। दादा है ना ओपन हार्ट थे, और हर व्यक्ति से हेलो हाउ इस प्रकार की बातें, हेलो करे बिना बातें नहीं करते थे, छोटा हो बड़ा हो। तो एक भाई सुना रहे थे, आध्यात्मिकता का जो सुख है, जो भगवान जो प्राप्त हम सब ने किए हैं, बाबा के बच्चे हैं, बाबा का बन करके रह रहे, तो उसका यथार्थ तो सुख अगर लिया है तो आनंद किशोर दादा ने लिया बोलते। तो आज तो कह रहे थे कि सब गाल फुला के चलते हैं, और जो प्रैक्टिकल में होने चाहिए वो दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन जो दादा में जो खूबी थी, जो खासियत थी, जो बाबा के प्रति जो संपूर्ण निश्चय था, और जो बाबा के प्रति जो प्रेम था, उनके प्रैक्टिकल जीवन में दिखाई पड़ता था। हाँ, माना जैसे कि दिखावा का ही स्वरूप है। प्रैक्टिकल में जो चीज हम दिखते नहीं है, और हम इतने साल से और उतने साल से हम बातें करेंगे और वो चीज दिखाई नहीं पड़ता है, तो जरूर ये बातें कहने में हम सबको आ ही जाता है। इसलिए फिर तो धीरे धीरे दादा का यही रहना हुआ। तो उसके बाद तो सेवाओं का जो क्षेत्र बढ़ता गया, तो जहां जहां सेवाएं नए नए खुलते थे सेंटर ब्रांचेस, तो दादा वहां जाते ही थे और वहां जाकर के उस प्रकार की शिक्षाएं देते थे, उमंग उत्साह देते थे, हिम्मत बढ़ाते थे। तो देखा जाए तो गृहस्थी जीवन के थे दादा, पारिवारिक जीवन से आए हुए थे, फिर भी उन्होंने इस प्रकार की स्थिति और अवस्था बनाए। कल्प वृक्ष के नीचे एक झाड़ में भी उनका फोटो है क्या? नहीं है ना? नहीं। परिवार जैसे कि एक लड़की थी, बोलते संगम भवन में, तो संगम भवन में थी, साथ में आए थे उनके एक बेटे, तो कहीं जंगल में गए थे तो वापस नहीं आए बोलते। हाँ, वो उनके बेटे थे। आबू रोड में। तो एक लड़की थी बोलते हैं, संगम भवन में रहती थी, लेकिन दादा ने जो नष्टमोह का चैप्टर तो वहीं पढ़ के आए थे, कभी कभी याद उतना नहीं करते थे, जैसे कि संकल्प ही नहीं जाता था उनका। वहाँ 14 साल की जो पढ़ाई चली तपस्या साधना, क्योंकि कोई चीज प्रैक्टिकल में जो करके आते हैं तो देखने में तो आ ही जाता है। तो इसलिए दादा के जैसे कि थोड़ा उम्र हो गई थी, जैसे ज्ञान में आने से आते 27-28 साल के थे, तो फिर धीरे धीरे थोड़ा हार्ट में कुछ यहाँ प्रॉब्लम आया दादा को, तो एंजियोग्राफी कर दिया था, तो उसमें जैसे कि उसे उबर नहीं पाए, तो हॉस्पिटल आपने खुल गई थी है ना? ग्लोबल, ग्लोबल में। तो फिर दादा हॉस्पिटल में रहते थे, तो आने जाने वालों को सदाई खुश करके रखते थे, और दादा कहते थे कि मैं तो एकांत में बाबा को याद करने के लिए आया हूँ। तो इसलिए ज्यादा दादा कहते थे ज्यादा डिस्टर्ब है ना, ज्यादा लोगों से इतना मिलना जुलना नहीं, कम कर दिया था, तो उनके लिए सब फिक्र करते थे। लेकिन जब मिलना जाते थे, तो मिलना जाने के बाद में भी दादा कहते हैं कि आई एम ओके, तो कभी बोलते आई एम ओके, कभी आई एम ओके बेटर देन यू, इस प्रकार के उत्तर बाबा दादा से मिलता था। तो दादा ने कभी भी अपनी तबियत के बारे में, उनके हावभाव से, उनके चेहरे से कभी भी इस प्रकार की आवाज होने नहीं दिया, सदाई खुश रहते थे। तो इस प्रकार से धीरे धीरे तबियत में जैसे कि उबर न पाने के कारण से धीरे धीरे उनकी जो तबियत बिगड़ गई, फिर भी उन्होंने इस प्रकार से अपनी अवस्था का पहचान दिया। तो कहते हैं 2 सितंबर 1998 8:20 में उन्होंने अपना भौतिक शरीर को छोड़े और बाप दादा के गोद में समा गए। तो दादा जो सेवाएं उन्होंने की, उस सेवा का ही फल आज हम सबको मिल रहा है। तो इसमें एक बीच में रमेश भाई की जो उनके बारे में कुछ लिखा है रमेश भाई ने, कि रमेश भाई ज्ञान में तो नहीं थे, उनकी माताजी ज्ञान में थी, तो बाबा को मम्मा को बॉम्बे जाना था, तो बॉम्बे जाना था तो रमेश भाई ने बोला कि माताजी को अपने बाबा को आप बुलाना चाहे तो बुला सकते हैं, हम जिस प्रकार की सेवा देने चाहते हैं हम दे देंगे। तो माताजी ने बाबा को निमंत्रण भेजा था, तो निमंत्रण भेजा तो बाबा ने स्वीकार नहीं किया। अगर रमेश बच्चा भेजता है तो मैं आऊंगा बोला था। तो फिर पत्र यहाँ से गया, रमेश भाई ने पढ़ा, जब तक मैं नहीं भेजू तब तक तो बाबा आएंगे नहीं, क्या किया जाए। तो फिर वहाँ जो पुष्प संत दादी उस वहाँ सेंटर में रहती थी, वाटर लूम मेंशन सेंटर में, मेंशन में, तो फिर उन्होंने रमेश भाई को बोला कि भेजो आप निमंत्रण जल्दी करके बाबा को। तो मैं कैसे भेजूंगा, बाबा इतने प्रतिवान व्यक्ति तो है, मेरे अपने भाषा में भेजूंगा तो बाबा उनको वो कोई ऐसे शब्द होगा कि जो प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं उनके लिए तो लेटर भी ऐसे होने चाहिए, निमंत्रण पत्र भी, क्या किया जाए। तो रमेश भाई कहते हैं कि एक मीठी समस्या खड़ी हो गई मेरे लिए। तो फिर उन्होंने, वो दादी ने फिर दादा से मिला दिया, आनंद किशोर दादा से, उनसे अगर आप मिलोगे तो यथार्थ शब्द, यथार्थ जो चीजें आपको दे देंगे, फिर उसको आप संशोधन करके अपना नाम लेकर के भेजना बोला। तो दादी ने उनसे मुलाकात कराई, आनंद किशोर दादा से रमेश भाई की। उसके बाद उन्होंने जो लेटर बना के दिए, तो बाबा ने दूसरे दिन जैसे कि यहाँ से फोन किया कि तुम्हारा लेटर, बच्चों के लेटर पा के खुश हो गया, हम आ रहे हैं। तो उस समय मम्मा बाबा 4 महीने के लिए बम्बई गए थे। तो इस तरीके से रमेश भाई कहते हैं कि उनसे हमारी पहली मुलाकात इस कारण से हुई, दादा को हमने बहुत बहुत थैंक्स दिए। तो इस रूप से लगभग जितना उन्होंने, जैसे हमारे विश्व किशोर, विश्व रतन दादा और चंद्रस दादा की जो किताबें हम सबको मिली अच्छी रीति से, आदि से अंत तक जो विस्तार में है, वो तो हम सबको मिल नहीं पाया और कभी मिलना भी मुश्किल है। फिर भी जितना 2-4 पेज 6 पेज में जो बातें उसमें लिखी गई थी, वर्णन किया गया था, उसको सार में है ना याद करते हुए स्मृति में ला करके जितना उसमें, हाँ इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए। एक बार जयंती बहन जी यहाँ मेडिटेशन हॉल में क्लास करा रहे थे, तो उस समय दादी प्रकाशमणि जी की आंखों से पानी आ गया। तो किस बात में पानी आया वो सुना रहे थे कि अभी तक फॉरेन में 1 पेज की मुरली ही ट्रांसलेशन होके जाती थी। तो दादी को हैरान हो गया, किसी ने मुझे सुनाया भी नहीं, किसी ने बताया भी नहीं, और 1 पेज की मुरली सुन के विदेश के भाई भी खुश हो रहे। ये तो हैरान की बात है। फिर दादी ने उसको पूरा किसी को खास ड्यूटी दे करके पूरा मुरली ट्रांसलेशन करने का परंपरा बैठाई थी दादी ने। तो ऐसे अनन्य रत्नों का जो हम स्मरण में लाते हैं, स्मृति में आती है, तो हम सबको बहुत ज्यादा ताकत मिलता है, शक्ति मिलती है। तो पूर्वजों को याद अगर अच्छी रीति से हम करते हैं तो कभी कभी तो योग लगाना ही नहीं पड़ता है। जैसे कि जान में जान भर जाती है, ताकत आने लगता है। इसीलिए पूर्वजों को हर दिन 1 मिनट 2 मिनट याद करके अगर हम याद में बैठते हैं तो हमारा भी जीवन जैसे कि कुछ प्राप्तियों से भरपूर हुआ हम सबको भी महसूस होता है। तो इसीलिए जो ये सीरीज शुरू हुई है, हम सबको हर दिन कुछ न कुछ मिलता ही रहेगा। तो आगे जाके याद करने के लिए, बुद्धि में लाने के लिए सहज होगा। तो इतने में अपना जो भी तो इसमें एक दो लाइन और भी मैं जोड़ूंगा। इसमें दादा ने जो पत्र व्यवहार किए थे देश विदेश में, और भारत के जो कई कार्यालय ऑफिसों में जो दादा की लेटर गए हैं, आज भी वो लेटर रखा हुआ बोलते, उस लेटर को देखकर के लोग हैरान हो जाते हैं। इतनी अथॉरिटी थी बोलते उनके पास में, बोल में इतनी ताकत थी। तो एक लाइन हमारे विश्व किशोर भाव की कहानी सुना देता हूँ एक लाइन में, कि हमारे जो गलुआ मिस्त्री थे, गलुआ जी, हाँ, तो बाबा के जमाने में, मम्मा के जमाने में यहाँ से यहाँ काम करते आए थे। अभी 2-3 साल पहले उनको उम्र हो गई तो उनको छुट्टी कर दिया गया। तो वो कहते हैं कि जो विश्व किशोर भाव में उतनी ताकत थी कि यहाँ से उन्होंने जो अपना जो राशन कार्ड बनाना था उनको, तो उन्होंने यहाँ से फोन कर दिया कि हमारे एक यहाँ काम करने वाले मिस्त्री हैं, उनको राशन कार्ड बना के दो बोल के नगर पालिका में, मना उस समय तक क्या था। तो फोन कर दिया तो उन्होंने, कार्यालय के लोगों ने सोचा कि यह एक गैर सरकारी संस्था है, इनकी इतने बड़े रवाब हो सकता है क्या, इतने अथॉरिटी से दादा ने बोला था। तो उन्होंने दादा गलुआ जी जाने के बाद करके दिया ही नहीं, 9 दिन के बाद में गलुआ जी जाके आए तो करके दिया ही नहीं, अपने तो फोन कर दिया था। तो ठहरो रोको मैं जाता हूँ। तो दादा सूट बूट टाई लगा के अपने स्वरूप में स्थित होके गए, वहां पहुंचते उन्होंने बना के दिया बोलते, एक शब्द बोले नहीं, उतनी अथॉरिटी उतनी ताकत थी उनके अंदर। पहले दादा आगे न होने से बहुत सारी बातें कर रहे थे, वहाँ पूछने के बाद में जैसे कि उनका तो बोलने बंद हो गया, हाथों हाथ सिग्नेचर करके गलवा जी को दिया और गलवा जी इतना खुश हो गए कि दादा से उनका बहुत गहरा संबंध था गलवा जी के साथ में। तो इस तरीके से वो स्थिति और वो अवस्था ने काम कराए। तो ये ताकत की बात है, जो स्थिति और स्वरूप में टिकते हैं, जो प्रकृति सहित दुनिया के लोग तो आगे नमन करना ही है, तो हम सबको भी ये स्थिति बनाने की जरूरत है। तो पूर्वजों की जो कहानी हम सुन रहे उसको याद करके हम भी सदा खुश रहे। अब हम सबको उनके पथ पर चलने के लिए उन्होंने जो मार्ग दिखाए हैं, हमारा रिटर्न यही होगा कि हम सब उनके कदम पर कदम रख के चले और बाप दादा को उसका रिटर्न दे सके। इसमें बाप दादा और हमारे आदि रतन और पूर्वज खुश होंगे। ओम शांति।